किसी ने आचार्य हेमचंद्र सूरी से पूछा, मोक्ष क्या है और संसार क्या है, क्या आप हमें समझा सकेंगे? क्योंकि लोगों ने ऐसा सुन रखा था, मोक्ष के बारे में बातें होती है तो घंटों तक बातें होती रहती है, मोक्ष के बारे में कुछ पढ़ना है तो इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती है कि लगता है कि जिंदगी समाप्त हो जाएगी, किताबें पढ़ते रहेंगे मोक्ष को समझ नहीं पाएंगे। तो किसी जिज्ञासु ने हेमचंद्र सूरी से पूछा कि आप मुझे संक्षेप में यदि बता सकते हैं तो मोक्ष के बारे में बताइए। तो हेमचंद्र सूरी ने उसे कहा, अयम आत्मैव संसार कषायेन्द्रिय निर्जित तमेव तद विजेतारम मोक्ष माहुर मनीषिणा। ये देखो भैया, ये तुम्हारी जो आत्मा है वही मोक्ष है और वही संसार है। तो वो आदमी सोचने पड़ेगा, आप क्या बात कर रहे हैं, अभी तक तो हमने ऐसा सुना है कि मोक्ष है, इतनी दूर है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वहां जाना बहुत मुश्किल है, इतना सब कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, और आप तो कह रहे हो कि तेरी आत्मा वही मोक्ष है और तेरी आत्मा वही संसार है। अब एक ही चीज के अंदर दोनों बातें तो कैसे हो सकती है, होता है। आपकी एक ही गाड़ी जो है वो कभी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी चलती है और कभी गैस के ऊपर भी चलती है, दोनों बातें होती है एक के अंदर। यही आत्मा उन्होंने समझाते हुए कहा कि यही जो तुम्हारी आत्मा है, जब उस आत्मा के अंदर कषाय बढ़ते हैं, कषाय आते हैं, कषाय आत्मा के ऊपर छा जाते हैं तो वही संसार हो जाता है, वही संसार है। कष माने संसार, जिससे संसार बढ़ता है, ऐसी तुम कोई प्रवृत्ति करते हो, कोई वृत्ति रखते हो, कोई एक्टिविटी करते हो। एक्टिविटी और एटीट्यूड जब कषायों से भर जाते हैं, कषाय माने गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार, छल, कपट, लालच, लालसा, आपत्ति, बहुत सारे फॉर्म हैं इसके। और उससे आगे बढ़ के जाओगे, थोड़े और गहराई में उतरोगे तो डर की सेंस, डर है भीतर में, भय है, छोटी छोटी बातों में खुशी ना खुशी, बात बात में नाराजगी आ जाती है, बात बात में खुशी हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, कभी मन डिप्रेस हो जाता है बिना कारण, मन के अंदर एक तीस सी उभर आती है, ये सारी जो बातें बनती हैं। कभी किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण जगता है मन में, उसके बिना चैन नहीं पड़ता है, उसको मिले बिना, उसको पाए बिना, और सारे दिन उसी के विचारों से मन परेशान रहता है। ये सारी वृत्तियां जो है वो कषाय है, क्योंकि इससे संसार की यात्रा बढ़ती है, इससे संसार बढ़ता है। बस अब ये सब होता है तुम्हारी आत्मा के अंदर, तुम्हारे पोताने तुम्हारे स्वयं के भीतर के अंदर होता है, आत्मा से बाहर तो कहीं कुछ होता नहीं है। तो वही संसार है, और जब ये सब कुछ नहीं होता है, इसमें का कुछ भी नहीं होता है, और धीरे 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 ये सारे आवरण निकल जाते हैं, ये सारी परतें जो है वो निकल जाती है, वो उतर जाती है, तो बस वही मोक्ष है। जब तुम कषायों के चंगुल में हो, जब कषाय तुम पर हावी है, तुम कषायों की उंगली पकड़ के चलते हो, तो वो संसार है, और जब तुम कषाय मुक्त हो जाते हो तो वो मोक्ष है। और छोटी सी बात के अंदर उन्होंने जो है एक ही श्लोक की दो पंक्तियों में उन्होंने ये रहस्य उस साधक को समझाया। एक बार एक गुरु के पास में एक साधक जिज्ञासु पहुंचा, उसने कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए, मने मोक्ष जोइए छे, माटे तमारी पासे आव्यो छु, मने मोक्ष जोइए छे, मळशे? गुरुए कीधु मळशे। जो तू शू बोलो हमणा, मने मोक्ष जोइए छे, मने काढ़ी नाक ने जोइए छे काढ़ी नाक, पछी मोक्ष ज बसते, पछी जे बसते, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे निकाल दे, चाहिए निकाल दे, फिर क्या बचेगा? मोक्ष बचेगा। मुझे माने नहीं निकाल दे, अपने आप को निकाल दे। अब यहां तो तकलीफ क्या है कि आप जहां रहते हो वह माया भी है और मी भी है, दोनों है, माया मी, माया भी है और मी भी है, नहीं तो मी छूटता है और ना तो माया छूटती है। अब यह मोक्ष की बात करें तो कैसे करें? जब तक माया नहीं छूटेगी और मी नहीं छूटेगा तो मोक्ष की बात करेंगे कैसे, किसको करेंगे? तो माया में से तो बाहर आना पड़ेगा इसके लिए। अब आप रहते हो माया मी के बीच में, बराबर, और हम रहते हैं अहमदाबाद के अंदर, जो अहम मम और वाद का शहर है। अहमदाबाद एटले अहम मम अने वादनुं शहर, एनुं नाम अहमदाबाद। तो अहमदाबादी लोग जब मिलते हैं ना तो जरा गरूर से बात करते हैं, तो उनका अहंकार दिखता है उसके अंदर, वो वाद विवाद करने के लिए बहुत तैयार रहते हैं, प्रश्नोत्तरी बहुत करते हैं, और सवाल तैयार ही रहता है उनके पास में। यहां पर भी होंगे शायद, होंगे नहीं है, मुझे मिले हुए। वो शहर ही ऐसा है कि अहम मम और वाद का शहर। तो ये देखो मेरी यात्रा तो क्या है, अहम मम और वाद से आया कहां, वापस फंस गया माया और मी के बीच में। हमें अपने आप को मिटाइए, मुझे चाहिए, ये जो अपेक्षा है चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए, कुछ अचीव करना है, कुछ प्राप्त करना है, इन दो बातों से मुक्त हो जाइए, मोक्ष चाहिए। यही बातें कषाय है, मैं वो सबसे बड़ा कषाय है। कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ, कषायों को जो हम संक्षेप रूप के अंदर व्याख्यायित करना चाहते हैं या करते हैं तो ये चार बातें आती है, और इन चार बातों का संबंध हमारे रोज बरोज के जीवन से है। हम मोक्ष कहेंगे किसको, मोक्ष क्या है? मोक्ष एक प्रोसेस है, हम जो कर रहे, एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया और आपको मोक्ष मिल गया। मोक्ष कोई चीज नहीं है कि जाकर के आप खरीद लो, उसको ले लो, अपनी जेब में रख लो। मोक्ष जो है हमारे भीतर में हमें महसूस करना है। मोक्ष, मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति, मुक्ति का अर्थ होता है कुछ छूटता है हमारे से, कुछ हमारा जो है वो निकल जाता है, उतर जाता है, जर्जरित हो जाता है। और मोक्ष के पहले हमारे ज्ञानी पुरुषों ने जो प्रक्रिया बताई उसमें एक शब्द उन्होंने दिया, निर्जरा। निर्जरा का नाम मोक्ष, मोक्ष के लिए निर्जरा चाहिए। निर्जरा माने क्या? निर्जरा माने कुछ जो है वो निकल जाना, जरी जाऊ खंखेराई जाऊ, उसे हम मोक्ष कहते हैं। कषायों से मुक्त होना माने हमारी आदतों से मुक्त होना, हमारे आग्रहों से मुक्त होना। मन के भीतर में जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनसे मुक्त होना। बहुत बड़ी बातें हमें नहीं करना है, हम ये सोचें कि जो कषाय है क्या है। पहले हम संसार को समझे, बाद में हम मोक्ष को समझ पाएंगे। जब तक हम संसार को नहीं समझेंगे तब तक हम मोक्ष को समझ नहीं पाएंगे। जैसे भूख को समझे बिना भोजन को आदमी नहीं समझ पाता है, भोजन के पहले उसे भूख महसूस होनी चाहिए। भूख महसूस होगी तो भोजन का महत्व समझ पाएगा। लेकिन आदमी एक ऐसा प्राणी है कि जो वो सवेरे खाने बैठता है तो वो सोचता नहीं कि मुझे शाम को भी खाना है, जितना मिल सके अभी। और कुछ लोग तो वो ऐसा सोचते हैं, मिला है तो खा लो, फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा क्या पता, किसको पता नहीं। हालांकि आप लोग ऐसा नहीं सोचते हो, क्योंकि आप लोग बहुत तपस्वी आदमी हो, बहुत कम खाते हो। यहाँ के लोग मैंने देखा है, अमरीका के लोग बहुत कम खाते हैं, क्योंकि उनको जब खाते हैं तो कोई वॉच करने वाला आसपास में रहता ही है। आटलू लीधु केम लीधु आटलू खबर नहीं है उन्हें, कोई गोली लेवा नीचे पाची न लेवा है तो मुकी दो उसको जो है। और यहाँ वॉच करने वाले जो है ना हमेशा आसपास में, कभी ड्राइव कर रहे हैं तो अभी यहाँ पर जीपीएस की सिस्टम आ गई, लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ कि पीछे एक और लाइव जीपीएस बैठा हुआ रहता है। अब वो जो सामने जो जीपीएस है उसको आप बंद भी कर सकते हो, जो पीछे वाला जीपीएस उसको बंद कैसे करेंगे? उसको कहना पड़ता है या तू आ जाए यहाँ पर और मैं चला जाता हूँ। तो कोई ना कोई जो है मंडराया हुआ रहता है आसपास, वो देखता ही रहता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो है, जहां तक मैं सोचता हूँ, तो उनोदरी रसत्याग ये चीजें बहुत अच्छे ढंग से अनायास करते हैं। उन्हें पता है या नहीं है, उनका उद्देश्य है या नहीं है, बहुत कम खाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो है कम खाते हैं, वो गम नहीं खाते। हमारे एक महापुरुष ने बहुत अच्छा कहा है कि देखो जिंदगी में आराम से जीना है, आनंद से जीना है, तो तीन बातें सीख लो, कम खाना, गम खाना और नम जाना, झुक जाना। अब यहाँ के लोग जो है वो कम तो खा लेते हैं, लेकिन पीछे की दो बातें जो है, गम खाना, गम खाना माने च्युइंग गम खाना, नहीं वो नहीं है, च्युइंग गम तो बहुत खाते हैं यहाँ के लोग। गम खाना माने अपने गुस्से को निगल जाना, जो हम बात कर रहे हैं कषायों की बात, अपने अहम को निगल जाना, उसको गम खाना कहते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल हमारे दिल्ली शहर के जो बनिए हैं, बनिए माने व्यापारी लोग जो होते हैं, गुजराती में जाने अपने बानिया कहिए, गुजमाकू वाणिया बार से, तो ये बनिए लोग इतने हट्टे कट्टे क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है? बहुत तगड़े होते हैं बनिए लोग। बीरबल ने कहा झापना ये लोग गम खाते हैं। हाँ, गम खाते हैं, ये गम क्या चीज होती है? हम भी खाएंगे भैया, हमको भी बताओ क्या होता है गम। कि झापना आप नहीं खा सकते, बनिए ही खा सकते हैं, और कोई नहीं खा सकता, ये कैसे? मैं बताऊंगा आपको कभी। एक बार दिल्ली के सेठ जो है अकबर से मिलने के लिए आए, राज दरबार में आए, दरबार लगा हुआ था वहां पे। तो बीरबल ने जाके किसी आदमी को बोला कि देखिए सेठ जो आया है ये झुकेगा अभी अकबर के चरणों में, उस समय तो इसकी पगड़ी फेंक देना, उड़ा देना पगड़ी को। उसने ऐसा किया और वो बहुत सारे दरबारी लोग बैठे हुए थे उसके सामने, ऐसा करना माने बड़ा अपमान, और ये बड़ा सेठ थे, बड़ा सेठ था वो, अकबर भी उसकी इज्जत करता था। तो उसने सेठ ने ऐसे देखा, देख किसने पगड़ी मेरी उछाली, देख लिया उसने, कुछ नहीं, झुक गया वो। پگڑی اٹھا لی اپنی اور اپنی جگہ سے جا کے بیٹھ گیا. ایک اکبر بھی دیکھ رہا ہے یہ نظارہ اور بیربل بھی دیکھ رہا ہے. تو بعد میں بیربل نے اکبر سے کہا, اکیلے نے جب ملے تو آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا تھا؟ ارے ہاں, اس آدمی نے بہت سیٹ کی بے عزتی کی اور اس نے بہت جلیل حرکت کی, اس کی پگڑی اچھال دی. پھر بھی سیٹ کچھ بولے نہیں, وہ کچھ نہیں بولا. مجھے آشچری ہوا, تعجب بھی ہوئی, وہ کچھ بولا ہی نہیں, بس وہی غم کھانا. یعنی وہ اس میں کچھ بولتا تو جھگڑا ہو جاتا, اور آپ کے سامنے جھگڑا وہ کرتا تو آپ کی نگاہوں میں وہ گر جاتا. یہ کہتے ہیں اس کو غم کھانا. اپنے اپمان کو سیٹ نے جو ہے نکل لیا, پچا لیا اس کو, تو آپ کی نگاہوں میں اس کی عزت بڑھ گئی. شاید وہ لڑائی جھگڑا کرتا اس سمے, تو آپ کی نگاہوں میں اس کی عزت جو ہے کم ہو جاتی. تو بنیے اس لیے تگڑے ہوتے ہیں, تو دم کھاتے ہیں. کروس غصہ جب ہمیں آتا ہے یا کوئی بھی کشا ہے, اہنکار جب ہمیں آتا ہے یا جب ہم کسی کے ساتھ میں مایا کپٹ چھل کرتے ہیں یا آسکتی لالچ ایک پوزیسیونیس کی سینس جب بڑھتی ہے ہمارے بیتے میں, سب کشائے ہیں, اس سے اپنے آپ کو ہم بچا نہیں پاتے ہیں. روز بروز کی زندگی کے اندر, روز مرے کی زندگی کے اندر یدی ہم کشائوں سے اپنے آپ کو تھوڑا بھی بچا سکے تو وہ سب سے بڑا دھرم ہوگا, سب سے بڑی دھرم آرادھنا ہوگی. آپ مندر میں جائیں یا نہیں جائیں, سمائی کریں یا نہیں کریں, لیکن اپنے آپ کو ایک میسج روزانہ دے کہ مجھے کشائیوں سے بچنا ہے. ایک اپنا گول بنائیے, اپنا ایک موٹو بنائیے, ایک سوتر اپنے جیون میں رکھیے کہ مجھے کشائیوں سے بچنا ہے. یشو وجے جی مہاراج کو جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو اتنے شاستروں کا ادھین کیا ہے, اتنے شاستر بنائے ہیں, اتنے گرنتھوں کی رچنا کی ہے, تو ذرا ہمیں بتائیے کہ صحیح میں یدی آپ کو چھوٹا سا اپدیش دینا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ نکشل کے اندر, بہت چھوٹے روپ کے اندر. یشو وجے جی نے کہا کہ دیکھو بھیا, ہم نے بہت ساری باتیں کی, بہت گرنتھ لکھے, لیکن جن شاسن کا یدی کچھ سار ہے تو وہ یہی ہے. زیادہ کیا ہم کہیں, جس پروتی سے, جس وتی سے, جس ایٹیٹیوڈ سے اور جس تمہاری ایکٹیویٹی سے تمہارے راگت دویش کم ہوتے ہو, راگت دویش مدھم ہوتے ہو, بس وہی جن شاسن کی آرادھنا ہے. اتنا تم کر لو گے تو سمگر جن شاسن کی آرادھنا تم کر پاؤ گے, اور کچھ نہیں کرو گے تو چلے گا. روزانہ دیکھتے رہو, ایک پروگرام بناؤ کہ راگت دویش کتنے کم ہوئے, غصہ کتنا کم ہوا, اہنکار کتنا کم ہوا. کم ہوا کہ بڑا؟ بڑا تو کیوں بڑا, مجھے اسے کم کرنا چاہیے. یہی جیون کا ایک منتر بنا لو تو پھر موکش زیادہ دور نہیں ہوگا. سمگر جن شاسن یا جین دھرم جسے ہم کہیں, اس کا یدی کوئی ایک لکش ہے, اس کا کوئی یدی دھیے ہے, ٹھیک ہے, ہم بھاشا میں ایسا کہتے ہیں کہ آپ دو ہمیں موکش ماتے کریے جی, یہ سب ہم موکش کے لیے کرتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے دھرم کیوں کرتے ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں موکش ماتے کریے جی. وہ برابر ہے, لیکن موکش مانے کیا, مکت ہونا, اور مکت ہونا روز بروز ہمیں ہونا پڑے گا. ایسا نہیں کہ ایک دن آئے گا اور آپ مکت ہو جاؤ گے, اس کی پرکریا ابھی سے کرنی پڑے گی. ابھی آپ جہاں پر ہو, جیسے ہو, جو ہو, اسی میں پریورتن لانا پڑے گا. دیکھیے ایک یاترا ہے, اور یاترا آپ جہاں ہوتے ہیں وہاں سے پرارمبھ ہوتی ہے, نہیں کہ آپ کو جہاں ہونا چاہیے. ایسا ہوگا تو ایسا کریں گے, ایسا ہوتا تو ایسا کر لیتے, ایسا کر لیں گے. لوگ بہت سی باتیں بھوشیہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, دیکھیں گے سمے آئے گا تو کریں گے. وہ سمے اکثر تو کبھی آتا ہی نہیں, اور جب آتا ہے تو بہت دیر ہو جاتی ہے. اس سمے شاید شریر میں طاقت نہیں رہتی ہے. غصہ کر کر کے من کتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ بعد میں غصہ وہ سوبھاؤ ہو جاتا ہے. پہلے ہم یہ سمجھیں کہ غصہ ہمارا سوبھاؤ نہیں ہے, ہمارا سوبھاؤ جو ہے کشما ہے, پرسنتا ہے. نکی کریں کہ ہمیں پرسن رہنا ہے, کچھ بھی ہو مجھے پرسن رہنا ہے. दुनिया में सबसे बड़ी चीज जिसका आज दुकान है वो है प्रसन्नता। न लोगों के पास में प्रसन्नता है, न खुद के पास में है, न कोई किसी को देना चाहता है प्रसन्नता। जिसको देखो उसका चेहरा उदास है, जिसको देखो उसके चेहरे पे खुशी नहीं है। ऐसी गिरी उदासी जैसे खुशियों की हड़ताल है। किसी ने खुशियों की हड़ताल कर दी हो, ऐसी उदासी गिर गई। नयन नयन तरसे सपनों को, नयन नयन तरसे सपनों को, आंगन तरसे झूलों को, गलियां तरसे त्योहारों को और कलियां तरसे फूलों को। किसी होठ पर बजे न बंसी, किसी होठ पर बीन नहीं, उम्र समुन्दर की दे डाली किसने चंद बबूलों को। बबूल चंद है, कांटे थोड़े हैं, लेकिन इसी उम्र जो है किसी ने समुन्दर की उम्र देके उन्हें बेच दिया। खुशियां बहुत कम है और उन थोड़ी खुशियों को समेटना बस वही है। हम हमारे चेहरे के ऊपर प्रसन्नता रखें, हमारे चेहरे को खुश रखें, अपने आप को खुश रखो। दुनिया में सबसे अहमियत की चीज और सबसे मुश्किल चीज यदि कोई है तो वो है खुद अपने आप को खुश रखना। लोग औरों को खुश रखने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। अरे हम अपने आप को खुश रखें तो हमारा आसपास पूरा जो है वो खुश हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति नहीं होता है तो पूरा जीवन जो है वो उदास लगता है। एक हती बस तुम्हारी खानी, महफिल वो मोड़े थी जानी। एक हती बस तुम्हारी खानी, वो कमी क्या है, खानी क्या है। गम्मे एटलू मोटू नाम होए, गम्मे एटलू मोटू नाम होए, पर नाम वगरनी होए ननामी। नाम वगरनी होए ननामी, ननामी माने अर्थी, जिसे हम अर्थी कहते हैं हिंदी के अंदर। उसका कोई नाम नहीं होता है, कोई भी आदमी उसके ऊपर सोया हुआ रहता है। अंधाराना दामचियामा चीजो संगरी साव नकामी, अंधाराना दामचियामा चीजो संगरी साव नकामी। जिंदगी ने क्या इकट्ठा किया है, कभी शांति से सोचो, बैठ करके जरा जिंदगी के वर्षों को देखो। इस भीतर के अंदर, इस छोटे से दिल के अंदर क्या इकट्ठा किया, गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या, और वो इकट्ठा करते जाना है। उसी को हमने अंदर में भर के रखा है, हमने हमारा गुस्सा भर के रखा। किसी ने गुस्सा किया उसको भी याद रखा, उसको भी अंदर के अंदर डिपॉजिट कर दिया। किसी ने थोड़ा सा इंसल्ट किया, थोड़ा अहंकार किया, दो शब्द कह दिए, हमने उसे अपना लिया। हर चीज को लेने की आदत पड़ गई है, लेते रहो लेते रहो, बाबा बैठा जपता है, जो आए सो खपता है, जो आए सो। सोचते भी नहीं है कि चीज हमारे लायक है या नहीं, हमें लेना है या नहीं लेना है। अरे किसी के शब्दों ने तुम्हारे को दुखी किया है तो उन शब्दों को अंदर में क्यों रखते हो, ज्यादा दुखी होने के लिए। किसी के शब्दों से, किसी की भाषा से, किसी के बर्ताव से हम हर्ट हुए, चलो हो गए, बाद में क्या करना है। एक बार एक आदमी भगवान बुद्ध के पास गया और बेवजह उसने बुद्ध को गालियां दी, बोलता रहा, अनशन बकवास करता रहा। कुछ लोगों को झगड़ा करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, कोई वजह नहीं चाहिए, बेवजह बस वो लोग, उनको तो चालू हो जाना होता है, वो लोग राह देखते हैं कि कब चालू हो जाए। कल ही कोई मुझसे बता रहा था, मुझसे बात कर रहा था कि एक बार एक हस्बैंड और वाइफ के अंदर झगड़ा हो गया, तो वो इंडिया की आदत से मजबूर था तो हस्बैंड घर से बाहर निकल गया। अब उसने कहा तो पता नहीं था जाना कहाँ है, देखो इंडियन आदत थी उसकी और इंडिया से नया नया आया हुआ था, तो घर से बाहर निकल गया। बाहर निकल गया, घूमता रहा, घामता रहा, कहीं जाए कहाँ, इंडिया के अंदर तो बहुत जगह भी मिल जाती है, कोई सराय भी मिल जाएगी। अब यहाँ तो होटल के अंदर जाना है तो कम से कम $100 खर्चना पड़ेगा। तो 11 बजे उसने अपनी पत्नी को फोन किया कि मैं, मुझे आने में थोड़ी देरी होगी लेकिन मैं घर पे आ रहा हूँ। तो वो भी गुस्से में थी, तो उसने कहा तुम आ रहे हो, खाने को क्या बनाना है। उसने कहा कि अभी भी इसका गुस्सा उतरा नहीं है। उसने कहा और कुछ नहीं, तो कुछ नहीं बनाना हो तो जहर बना देना। उसने कहा ठीक है मैं बना दूंगी, बना देना लेकिन तू ही खा लेना, मैं नहीं आऊंगा, बनाना और तू खा लेना। गुस्से में था वो। अब कुछ औरतों को आदत ही ऐसी होती है, वो सवेरे खाने बैठेंगे, शाम को क्या बनाना है, अभी सवेरे का खाना चालू भी नहीं हुआ अभी तो, और तुम शाम की बात कर रहे हो, उसको सवेरे तो खाने दो, उसने स्टार्ट नहीं किया सवेरे का खाना कि शाम को क्या बनाना है, तो वो बेचारा खा भी नहीं सकेगा, और वो कहेगा कि हाँ ठीक है चलो शाम को ये बना देना, ये दूसरा कुछ, तो कहेगा ठीक है वो नहीं बनता है तो वो बना देना, नहीं नहीं मैं तो वो बनाने वाली हूँ, और तो नक्की है फिर पूछते क्यों, तय करके रखा है कि यही बनाना है ना, तो जरा हमज तू तमने खबर पड़े ना, तमने शू गमे थे, अरे आटा बसे तमें खबर न ली मैंने शू गमे એટલા મારે તો કહું છું। તો વો આદમી રાજકોટ 11 બજે 12 બજે 11:30 11 બજે ઘર પે વાપસ પહોંચ્યા, તો વો ઉસકી ઔરત ઉસકી રાહ દેખ કે બેઠી હુઈ થી, તો ઉસને પૂછા ક્યા તુને ખાના ખા લિયા, નહીં 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 મેં ભારતીય પતિવ્રતા સ્ત્રી હું, પતિ કો ખિલા કે બાદ મેં ખાતી હું, મેને જહેર બના તો લિયા હૈ લેકિન મેં ભારતીય પતિવ્રતા સ્ત્રી હું, બિના ખિલાએ મેં ખાતી નહીં હું। अरे ठीक है तू पतिव्रता है, लेकिन भारत में एक रिवाज और भी है, पति को खिलाने से पहले चख लेना चाहिए तो रसोई बराबर हुई है नहीं हुई है। हर्ट की फीलिंग्स को हम कितना अंदर रखते हैं, कहां तक अंदर रखते हैं, हम सोचें तो आदमी बुद्ध के पास गया और किसी बकवास करने लगा, बोलता रहा बोलता रहा, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो गया, थक गया वो। देखिए आप गुस्से के अंदर जल्दी थक जाते हैं, गुस्से में कोई बात करेंगे किसी से और अपने आप को वॉच कीजिए, थक जाएंगे, सांस फूल जाएगी, और इसमें भी यदि सामने वाला व्यक्ति कुछ जवाब नहीं देता है और उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट रहती है तो हमारा गुस्सा बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। आप गुस्से में ज्यादा देर तक गुस्सा कर नहीं सकते, ज्यादा देर तक आप बोल नहीं सकते, तो थक गया आदमी, वो हांफने लगा, उसकी सांस फूल गई, बुद्ध ने उसको कहा कि बैठो, वो तो गुस्से में था अभी भी। बुद्ध ने कहा देखो भैया मैं तुम्हें एक सवाल करूं, पूछो क्या पूछना है। उस आदमी ने सोचा कि लोग सारे बुद्ध के पास में पूछने आते हैं और ये आज मुझे पूछ रहा है। उसने कहा कि देखो तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आए, कोई तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने के लिए आए और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सुंदर गिफ्ट लाता है, सुंदर भेंट लाता है और वो तुम्हें प्रेजेंट देना चाहता है और पैकेट तुमको देता है और तुम्हें वो नहीं चाहिए और तुम उसे वापस लौटा देते हो, सपोज मानो उसके नहीं चाहिए तो वो चीज किसकी रहेगी, और इसने क्या पूछना है, जिसको जो लाया है उसकी रहेगी, मुझे नहीं चाहिए तो वो तो उसी की रहेगी ना। बस ठीक है तुमने जितनी गालियां दी मुझे एक भी नहीं चाहिए, तुमने इतनी गालियां दी मुझे एक भी नहीं चाहिए, वो सारी की सारी तुम्हें रखना है तो रख, तुम्हारा माल तुम्हें मुबारक। हम अपने मन को पूछे कि किस व्यक्ति ने शब्दों से हमें पीड़ा पहुंचाई, यानी उसने गुस्सा किया, चलो हमने गुस्सा नहीं किया उसने गुस्सा किया, तो उसने एक गुस्से का मैसेज आपको दिया। अब वो शब्द जो है हम उन शब्दों को याद रखते हैं अपने भीतर के अंदर, उन शब्दों को हम डिपोजिट करते हैं उसे याद, उसने तो एक बार शब्द कहकर के हमें घा पहुंचा दिया, हम बार बार उन शब्दों को याद करके अपने आप को दुखी करते हैं, उन्हीं शब्दों को याद करते रहते हैं। इतना ही नहीं, दिन बीत जाते हैं, सप्ताह बीत जाते हैं, महीनों बाद भी उस चीज को हम याद रहते हैं, और जब भी उस व्यक्ति का चेहरा हमारी आंखों के सामने आता है उसका विचार कौंधता है दिमाग के अंदर और हमारे भीतर के अंदर एक गुस्सा उठता है, उसने मेरे साथ में ऐसा किया था, उसने मुझे ये शब्द कहे थे, और हम मौका ढूंढते हैं उसे बदला लेने के। तो बदला लेने की जो भावना है, गुस्सा खतरनाक नहीं है लेकिन गुस्सा जब द्वेष में बदल जाता है वो खतरनाक बन जाता है, द्वेष माने बदला लेने की भावना। गुस्सा है तो ठीक है, देखिए हम लोग मानवीय हैं, मानवीय संवेदनाएं हमारे साथ में है, भावुकताएं हमारे साथ में है, और इमोशन सेंटीमेंट्स जो ह्यूमन सेंटीमेंट्स है उनके सहारे ही हम जीते हैं। तो अभी आप सोचो कि मैं कभी गुस्सा करूं ही नहीं, कोई गुस्सा कभी मेरे पर करे ही नहीं, तो वो शक्य नहीं है, संभव नहीं है, गुस्सा तो आता है, लेकिन गुस्सा जो है द्वेष में बदलना नहीं चाहिए। अहंकार, अब हम कुछ प्रयत्न करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, तो अहंकार आना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा अहंकार कम से कम रिश्तों में प्रतिबिंबित नहीं होना चाहिए। जो रिश्ते हैं हमारे, जिंदगी जीने के लिए रिश्ते बहुत जरूरी है, रिश्तों के सहारे जिंदगी जी जाती है। हम जिंदगी में अकेले जी नहीं पाएंगे, अकेले रहना कई बार मजबूरी होती है, लेकिन आदमी अकेले जी नहीं पाता है क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है, उसे कोई ना कोई चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, किसी की प्रेजेंस चाहिए। अहंकार जो है वो सबसे बड़ी एक बाधा बनती है सह अस्तित्व के अंदर। किसी के साथ में आपको जीना है तो ये अहंकार बहुत बड़ी बाधा बनती है। और दूसरा, अक्सर हम लोग जो है एक छल कपट का सहारा ले लेते हैं, कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, मन में अलग भाव होता है, हम भाषा में बोलते हैं अलग चीज। कुछ लोग बातें इतनी सलूकाई से करेंगे, इतने अच्छे ढंग से करेंगे कि आप उसको पहचान नहीं पाएंगे कि इसका इरादा सही में क्या है, और ये बहुत गलत चीज है। ठीक है, एक बार ऐसा कई बार करना पड़ता है, या एक बार ऐसा हम करते हैं कि भाई किसी को दुख नहीं हो इसको, इसके लिए उसको अच्छे ढंग से हम बात करते हैं, लेकिन यदि उसके पीछे हमारा इरादा कुछ गलत है तो वो माया, वो कपट, वो छल हो जाता है। तो एक सवाल ये भी आता है, यदि छल नहीं करेंगे तो हमें साफ साफ कहना पड़ेगा, और साफ साफ कही हुई बात शायद किसी को दुख लगेगा, उसको उसको पीड़ा होगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या करूंगा। अब किसी को बुरा लगे, अच्छा नहीं लगता है उसको, यदि यह हमारा इरादा सही है कि भी उसको दुख नहीं पहुंचे, और हम शायद बात को थोड़े अलग ढंग से कहते हैं वहां तक ठीक है, लेकिन हमारे स्वार्थ के लिए हमें कुछ मिलता है और हमारा कुछ काम होता है, और इसके लिए भी हम छल का सहारा लेते हैं, किसी को तकलीफ नहीं हो, किसी को पीड़ा नहीं हो, उसके लिए शायद थोड़ा झूठ हम बोल भी देते हैं, टेक्निकली नहीं बोलना चाहिए पर मानो कि बोल देते हैं, तो रिश्तों के अंदर वो चीज गायब है, उसको अलाउ किया गया है। लेकिन हमारा इरादा सही नहीं है, इसलिए जैन धर्म हमेशा जो है आपका इरादा क्या है वो पहले देखिए, इंटेंशन क्या है। एक्सीडेंटल हिंसा को जैन धर्म ने एक्सेप्ट किया है, एक्सीडेंटल वायलेंस को जैन धर्म ने एक्सेप्ट किया, लेकिन इंटेंशनल वायलेंस को उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। वो इंटेंशनल जो भी आप करते हैं, इरादे से जो भी करते हैं, कभी एक्सीडेंटल कषाय हो गया बातों बातों के अंदर, कभी गुस्सा आ गया ठीक है, कभी अहंकार दिखाई दे दिया, होता है ऐसा। लेकिन हर बार यदि हम अहंकार का पल्लू पकड़ लेते हैं और अहंकार की उंगली पकड़ लेते हैं, बस मैं कहता हूं कि यह होना ही चाहिए। बहुत तरह का अहंकार होता है, कुछ लोगों को अपनी बुद्धि का अहंकार होता है, अपने नॉलेज का अहंकार होता है, जो जानकारी और नॉलेज क्या है, जानकारी और कुछ नहीं है इसके अलावा, हमारा नॉलेज क्या है। जब तक आपका नॉलेज आपके दिल के अंदर किसी के लिए एक संवेदना पैदा नहीं करे, करुणा पैदा नहीं करे, तो वो ज्ञान जो है मात्र जानकारी है, इसी ज्यादा कुछ नहीं है। और जानकारी तो जो अलमारी के अंदर किताबों में रहती है, वो जानकारी हमने किताब में से दिमाग में ला दी, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो चार पैर वाली अलमारी है, ये दो पैर की अलमारी हो गई, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जानकारी, जानकारी से क्या होगा। हमारा ज्ञान हमारे में करुणा जगाए, हमारे में संवेदना जगाए, हम औरों की पीड़ा समझ सके। ज्ञान किसके लिए है? जब तक आप औरों की पीड़ा नहीं समझ पाते हैं तब तक ज्ञान सार्थक नहीं है। हमारे तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर बनने से पहले, तीर्थंकर होने की साधना, उसने एक महत्वपूर्ण जो फैक्टर है, महत्वपूर्ण जो पहलू है वो क्या है मालूम है आपको? औरों के बारे में सोचना। वो चाहते हैं कि सारी सृष्टि के तमाम जीवों के दुख दूर हो। हमने उसको ट्रेडिशनली सभी जीव करु शासन रसी, इन शब्दों के अंदर हमारे ज्ञानी पुरुषों ने बांधा, उसमें गहराई है। मैं सब जीवात्माओं के दुख दूर करूं, ऐसी भावना से तीर्थंकर हुआ जाता है। और जब तक ऐसी भावना पैदा नहीं होती कोई आदमी तीर्थंकर नहीं बनता। वो कितनी भी साधना कर ले, कितनी आराधना कर ले, मोक्ष में जा सकता है, तीर्थंकर नहीं हो सकता। तीर्थंकर बनने की यह शर्त है कि आपको सभी जीवात्माओं के प्रति करुणा मैत्री पैदा करनी होगी, सब सुखी हो। और हम सोचें यह सृष्टि, ये दुनिया एक जैन धर्म ऐसा धर्म है जो आपको एक चांस देता है कि आप भी तीर्थंकर हो सकते हैं, मोक्ष में भी जा सकते हैं, तीर्थंकर बनकर के भी मोक्ष में जा सकते हैं। तो चांस लेना है कि नहीं लेना है तीर्थंकर बनने का? कुछ लोग कहते हैं कि अरे औरों के ऊपर उपचार क्या करना, हम हमारा सोचे, हमारे लिए करें, बहुत किया औरों के लिए, हमारे लिए कब करेंगे? हमारे तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर की आत्मा ने नंदन ऋषि के भाव के अंदर जब वो अंतिम समय में अनशन करते हैं, और नंदन ऋषि के भाव की कहानी आप पढ़ो तो पता लगेगा कि कितने माता क्षमन किए उन्होंने, लेकिन एक भावना को वो हमेशा अपने भीतर के अंदर महसूस करते रहे, मुझे सृष्टि के तमाम जीवों को सुखी करना है, मुझे ऐसी शक्ति मिले, मुझे ऐसा मार्ग मिले कि वो मार्ग में सबको बताऊं, जितने दुखी लोग हैं उन सबके दुख में दूर कर दूं। ये बहुत बड़ी एक विशेषता है, बहुत बड़ी योग्यता है जीवात्मा की, जब हम औरों के दुख को समझें, औरों की पीड़ा को समझें। मानव होकर मानवता से तुमने कितना प्यार किया, इस जीवन में आकर कितना औरों पर उपकार किया, औरों के लिए तुमने कितना किया। हमारे लिए तो सब कुछ करते हैं हम लोग, हमेशा सोचते हैं औरों के बारे में। हमारी तो कल्चर, हमारी संस्कृति, खाने बैठते हैं तो पहले हमारी भारतीय संस्कृति, ठीक है यहाँ पर एक लाइफस्टाइल अलग है, जीवन की शैली अलग है। आप इंडिया के अंदर जाओ, आज भी छोटे गांवों के अंदर, छोटे कस्बों के अंदर लोग खाने बैठते हैं और रोटी बनती है तो पहली रोटी जो है वो कुत्तों को डाली जाती है, गाय को खिलाई जाती है। इंसान नहीं खाता, आदमी नहीं खाता, बेटा कितना भी भूखा होगा माँ कहेगी नहीं बैठा रहे तू, पहले गाय को खिला करके आ। ये औरों के बारे में सोचने की एक सीख उन्हें दी जाती है। गांधी जी के बाद में भारत के समाज जीवन पर जिनका आध्यात्मिक प्रभाव रहा, ऐसे संत विनोबा भावे, बहुत बड़े एक आध्यात्मिक पुरुष हो गए भारत के विनोबा भावे वर्तमान सदी के। उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक जगह लिखा कि मैं जब बहुत छोटा था तो हमारे घर पे बहुत भैया अलार्म बहुत जल्दी बज रहा, तो 15 मिनट देर है, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा वो कुछ अलार्म जो है ना 15 मिनट पहले बज जाते हैं, फिर 10 मिनट पहले बजते हैं, 5 मिनट पहले आपको पूरा करना है, पूरा करना है, पूरा करना है, वो मैसेज है मेरे लिए। भैया मैं घड़ी देख रहा हूं, अलार्म नहीं बजाओगे तो भी चलेगा। तो विनोबा जी ने प्रेसिडेंट ने सिस्टम करके रखी है, ऑफिशियल नहीं है, और यहाँ अनऑफिशियल ज्यादा चलता है ऑफिशियल की बजाय। इट्स ओके, ठीक है ठीक है, चलो चलो बैकग्राउंड म्यूजिक का काम करेगा। तो विनोबा जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि हमारे घर पे बहुत सारे गांव के लोग आते रहते थे, तो हमारी माँ जो थी सबको खिलाती थी। एक बार कोई व्यक्ति खेत से पपीता लेकर के आया, तो पपीता ले पपयू, तो उसने माँ ने मुझे दिया पपीता, थोड़ा बड़ा पपीता था, कि बेटा ये तुम्हारे लिए है। तो मैं तो खुश हो गया और मैं खाने के ऊपर चक्कू लेकर के उसको छीनने के लिए बैठा, तो और मैं खाने की तैयारी कर रहा था और मेरी माँ ने कहा कि विनू तू क्या कर रहा है? माँ मैं पपीता खा रहा हूँ, तू अकेला ही खाएगा? तो तेरे भाई है ना, यार तो मैं जाके मेरे भाई को बुला लाया, हम दोनों बैठ गए खाने के लिए। फिर माँ ने टोका कि तुम लोग अकेले खाओगे? पर माँ मैंने भैया को तो बुला लिया, वो भैया तो आ गया, तुम्हारे दोस्त है ना जिनके साथ तुम रोज खेलते हो? हाँ वो तो सही, जाकर के चार दोस्तों को बुला के ले आया। फिर हम लोग खाने की तैयारी कर ले गए, फिर माँ ने देखा कि अपना नौकर रामू उसको नहीं दोगे तुम? मैं उसको भी बुला करके लाया और हमने 7-8 जन ने बैठ करके वो पपैया साथ में खाया, ठीक है हम सबको एक छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो हिस्से में आया, लेकिन वो खाने का जो मजा आ रहा है उस दिन, शायद वो मैं पूरा पपीता खा लेता अकेले तो वो मुझे मजा नहीं आया। पेट भर जाता मेरा, दिल नहीं भरता। दिल हमेशा खिलाने से भरता है, पेट हमेशा खाने से भरता है। खिलाना औरों को होता है, ये परोपकार। और यही हम दूसरों के बारे में सोचे हमेशा, अपने आप में तो सोच ही लेते हैं, और यही हमारे तीर्थंकर यदि बनना है, ये तीर्थंकरों का उपदेश है। एग्जैक्टली 10 मिनट पहले बाजू बराबर 15 मिनिट 10 मिनट આ મનમોહનસિંહ જતા રહ્યા ને ઇન્ડિયા, એટલે આ મૂવ બદલાય એટલે મનમોહનસિંહ મોડ ઉપર ફોન રહ્યા તો વાંધો ના આવે, એની અંદર બોલે છે નહીં। એક કવિને એક સવાલ કિયા, પૂછા ઉસને, પરમેશ્વર તો પહેલું પૂછશે। દેખીએ યહાં સે કઈ જાના હોગા, कुछ सवालों का जवाब देना होगा। हमारी कुछ विश्व की फिलोसॉफिकल सिस्टम्स जो है उनमें ऐसी सिस्टम है, वो लोग ऐसा कहते हैं कि आपको मौत के बाद खुदा के आगे, गॉड के आगे खड़ा होना होगा और वहां अपने किए कराए का हिसाब देना पड़ेगा आपको, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। तो और हम कर्मों की फिलॉसफी से समझने की कोशिश करें तो अगले जन्म में जो कुछ मिलेगा वो इस जन्म में जो हम करते हैं या जन्म जन्मांतर में जो कुछ किया हुआ है उसके आधार पर आपका हिसाब किताब तैयार होगा। बैठो ऊपर वालों के भाई तारो करी रयो, सर वालों के भाई तारो करी रयो, सर वालों क्या नहीं चाले कोई गोटाड़ो के भाई तारो करी रयो, सर वालू बनावी ले तू दुनिया ने, परंतु याद राखी ले के बनावट क्या नहीं चाले, बनावट क्या नहीं चाले। प्रभु अंदर निहाळे छे ऊपर तू जे करे छे, एवी सजावट क्या नहीं चाले। क्या जवाब आपवानो छे आपणे, कहीं ना कहीं तो हमें जवाब देना होगा। परमेश्वर तो पहलू पूछते, कोई नु सुख दुख पूछू तू, दर्द भरी दुनिया में जईने कोई नु आंसू लूछू तू, गे गे फे फे करता कैसो है शू शू शू, कबूतरो नु गु 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 काबर चकला चू चू चू, आओ चू चू ने गु गु तो काबर चकला करे छे, कबूतरो करे छे। त्यारे गॉड नी आगळ ए करशू, आपणे परमेश्वर नी आगळ ए करशू। एक एहसास होवो जोईए, हमें एक एहसास मिलना चाहिए। हम हमारी जिंदगी बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, हमें एहसास होना चाहिए नहीं हमने कुछ किया है, औरों के लिए कुछ किया है, औरों की आंखों में हमारे लिए खुशी है, चमक है, हमने किसी को एक दिलासा दिया है, आश्वासन दिया है, किसी को हिम्मत दी है, सहारा दिया है। और ये सब करते हुए भी किसी तरह का अहंकार नहीं, किसी तरह का अभिमान नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। हम जो कुछ करते हैं हमारे परिवार के लिए, हमारे मित्रों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, हमारे समाज के लिए, हम जहां रहते हैं उस वातावरण के लिए, हमारे आसपास के लिए, वो हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। किसी ने हमारे लिए किया तो हमें आज ये सब प्राप्त हुआ है। आज हमने ये जो हमारी विरासत देखी, ज्ञान की विरासत, सुख की विरासत, किस तरह से हमारे महापुरुषों ने वो संग्रहित किया है, घंटों तक इसके बारे में बात कर सकते हैं। वो तो मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, बच्चों के साथ में थोड़ी बात करनी थी, नहीं तो इसके बारे में इतना बड़ा योगदान, इतनी बड़ी मेहनत हमारे पुरखों ने की है। आज वो एक हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, थोड़ा भी ज्ञान हमें मिला है, ये इनकी बदौलत है, हम सोचते नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारा कोई कर्तव्य नहीं, हमारी कोई ड्यूटी नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना है,
और ऐसे ही चले जाएंगे यहां से?
नहीं, तो बहुत बड़ा कर्जा लेके जाएंगे। ये कर्जा होगा हमारे पास यदि हम कुछ नहीं करते हैं तो। हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और कषायों को यदि हम बीच में लाएंगे तो कंट्रीब्यूट कर नहीं पाएंगे। कुछ भी यदि कंट्रीब्यूट करना है, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि किसी की उदासी को थोड़ा कम कर सके, किसी के दुख को थोड़ा भी हम कम कर सके। डाल सके पर दुख दावा में तुम कितना आंखों का पानी, कितने आंसू तुमने औरों के लिए, तुम्हारी आंखों में कितने आंसू आए, कितने आंसू बहाए। खुद के लिए तो हर एक रोता है, कोई भी रोता है, बिल्कुल चोट लगती है तो आंखें भर आती हैं। वो आंसू बहाने नहीं चाहिए, उन आंसुओं को तो आंख में ही रखने चाहिए। अपने लिए आंसू बहाए तो क्या बहाए, अपनी पीड़ा को तो पी जाओ, औरों की पीड़ा देखो। जो अपनी पीड़ा को पी जाता है वो ही औरों के दुख को महसूस कर पाता है। हम हमारे कषायों में से ही बाहर नहीं आते हैं तो औरों की पीड़ा को क्या देखेंगे। छोटी छोटी बातों को हम मुद्दा बना देते हैं, छोटी छोटी बात के अंदर। मैं अक्सर ऐसा कहता हूं, ये अमेरिका के अंदर आकर के आप लोगों का एटीट्यूड बदल गया। यहां पर जो हमारे इंडियन लोग आए ना, इसमें खास करके हम तो हमारी कम्युनिटी की बात करें, जैन लोगों की बात करें, तो मैंने ऐसा वॉच किया है, मैं गलत हुआ सही हूं मुझे पता नहीं है, कि अमेरिका के लोग जो है ना वो बात बात में क्यों करते हैं, और किसी को कुछ भी हुआ तो क्यों कर देते हैं। और ये हमारे जैन लोग जो है वो बात बात में इश्यू करते हैं, छोटा सा कुछ भी होगा तो उसको इश्यू बना देंगे। अब इश्यू के अंदर उनका अहंकार जो है रिफ्लेक्ट होता है, और कई बार तो पूरे समाज को डिस्टर्ब कर देंगे अपनी छोटी सी बात को लेकर के। और फिर उनको हम कहें कि भाई तुम इतना हिस्सा लो, तुम करो, नहीं नहीं मुझे करना नहीं है, मैं तो सजेशन देता हूं। इस तरह का सजेशन से क्या होगा, और अहंकार हम किसके साथ में कर रहे हैं, हमारी सिस्टम को हम कमजोर कर रहे हैं ये सब करके। कषाय भावों से, हमारे कषाय भावों से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचे। कषाय करो, उतना ही करो कि किसी को पीड़ा नहीं पहुंचे। कषाय करने की छूट है, चलो कीजिए कषाय। आपका गुस्सा यदि किसी को नुकसान नहीं करता है तो कोई तकलीफ नहीं, हालांकि मनोविज्ञान तो उसके लिए मना ही करता है कि इसमें से एक सैडिक पर्सनालिटी आदमी की डेवलप होती है। जब आदमी दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं करता है, खुद के ऊपर गुस्सा करता है, तो उसमें से एक नैसर्जिक पर्सनालिटी डेवलप होती है। हमें इस तरह के कषाय भावों से मुक्त रहना है, कषाय भावों से बाहर आना है। दूसरों की पीड़ा को सोचे और आंखें भर आए बराबर, अपने ही दुख पे प्यार होना। एक कवि ने बहुत अच्छी एक बात कही, उसने कहा कोई आदमी बात बात पे, कुछ लोगों की आदत होती है बात बात पे उनकी आंखें भर आती है, वो ओवरहेड टैंक जो है बहुत भरी हुई रहती है, वो छलक जाती है छोटी सी बात को लेकर के बात बात में। तो उसके लिए कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, उसने कहा कि रोक ले जब तक आंसू जो कि चश्मे तर में। अभी आंख में आंसू आते हैं तो वो पलकों के किनारे के ऊपर रहते हैं, नीचे गिरते नहीं है, ऐसा उसने देखा होगा। तो उसने कहा रोक ले जब तक आंसू जो कि चश्मे तर में है, कुछ नहीं बिगड़ा है अब तक, घर की दौलत घर में है। बाहर नहीं गई है दौलत, आंसू बह गए नीचे टपक गए तो दौलत बाहर चली जाएगी। अपने आंसुओं को पी लेना, अपनी पीड़ा को पी लेना, अपने कषायों को पी लेना, अपने भीतर में पी लेना। औरों के दुखों को देखे तो हमारे आंसू उसके अंदर पानी भर के टपकने चाहिए, उनकी दुखों की पीड़ा, दुखों की आग जो है वो शांत हो जाए। गोरखनाथ ने कहा अगला अग्नि होइबा उदू आपन होइबा पानी, अगला आदमी आग हो जाए तो हम पानी बन जाए। इस जीवन के व्यवहार में थोड़ा कम संतुलन रखें, और इसके लिए जिसके साथ में जीते हैं, जिसके साथ में रहते हैं, जिसके साथ में हम काम करते हैं, देखिए ये सारे जीवन के पहलू हैं। या हम किसी के साथ में जीते हैं, साथ में रहते हैं, कई बार किसी के साथ में हम काम करते हैं, एक चीज यदि हम ऑब्जर्व करें और अपनाएं, कोई भी रिश्ता है उसके बीच में एक स्पेस दे दें, थोड़ी जगह दे दें। हर रिश्ते में यदि थोड़ी एक स्पेस हम दे देंगे तो कषाय भाव से हम बच जाएंगे। वेट एंड वॉच, थोड़ी स्पेस दे दो, अपने आप को थोड़ा उससे अलग रखो और किसी भी चीज को बहुत सख्ताई से मत लो, बहुत हार्ड एंड फास्ट सख्ताई से नहीं लेना, जिंदगी है। देखिए हम कषाय करेंगे, इसका असर एक तो कर्मबंध की प्रक्रिया में तो होगा ही, गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या, ये सारे ऐसे मनोभाव हैं, ऐसे सेंटीमेंट्स हैं जिनके करने से, जिनके करते ही हमारे भीतर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, शरीर के केमिकल रजिस्ट्रेशन स्वयं बदल जाते हैं और कुछ जो ग्लैंड्स हैं हमारी, उनका श्राव या बढ़ जाता है या कम हो जाता है, और वो जब ब्लड के साथ के अंदर एसिमिलेट होता है तो उसका असर हमारे मूड पर भी पड़ता है और शरीर पर भी पड़ता है। कर्म बंद होते हैं वो बात तो अलग है, शरीर को भी नुकसान होता है, मन को नुकसान होता है, ज्यादा गुस्सा करने वालों की स्मरण शक्ति कमजोर होती है। आप देखना कई बार हम शिकायत करते हैं कुछ याद नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, पहले अपने आप को जरा कटो लो कि किसी के लिए कोई प्रेजुडिस अंदर दबा के रखी है, कोई प्रेजुडिस, कोई ग्रजिस अंदर दबा के रखे हैं। अब क्या है कि हमारा दिमाग बहुत छोटा सा दिमाग है, आप फिजिकली एक्सरे के अंदर या ब्रेन को देखेंगे MRI करके तो ब्रेन कितना है, इतने बड़े शरीर के अंदर 4-6 फुट का आदमी, उसका ब्रेन कितना है, छोटा सा है। अब उसमें आपने गुस्सा भी रखा, अहंकार भी रखा, ईर्ष्या भी रखी, ये सारे भाव रखे तो जगह तो ऑक्यूपाई हो जाएगी ना उसकी, तो मैत्री के भाव कहां रहेंगे, फिर करुणा के भाव कहां रहेंगे। अब क्या रखना है, इतनी छोटी सी चीज है, वो ज्वेलरी का बॉक्स आपको दिया है और ज्वेलरी के बॉक्स में आपको ज्वेलरी रखना है या घर का निकाला हुआ कचरा रखना है, हमें सोचना है हमें क्या करना है। कषाय भाव जो है उससे हमें बचना है, अपने आप को बचाए रखना है, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। कषाय से आप ऐसे बच नहीं सकते क्योंकि कषाय हमारी पैदाइश है, हमारे भीतर में पैदा होते हैं, तो हमें उसके लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई माला मिल जाए कि हमें गुस्सा आए ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ ऐसा एक मंत्र है, मुंह के अंदर पानी भर के रखो हमेशा, गुस्सा आएगा ही नहीं, 24 घंटे मुंह में पानी रखने का, लेकिन गुस्से में पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए वापस, कर नहीं पाते, हो नहीं पाता। इसीलिए हमारे ज्ञानी पुरुषों ने एक सूझ हमें दी, एक सोच हमें दी, एक शब्द दिया, मिच्छामि दुक्कड़म। जब भी गुस्सा आए, अहंकार आए, अपने मन से एक सजेशन दो अपने आप को, ऑटो सजेशन, मिथ्यामि दुष्कृतम, मैंने ये गलत किया, से गुस्सा मुझे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए गुस्सा, मैंने क्यों गुस्सा किया। आप देखिए हर बार किसी न किसी रूप में कषाय हम करते हैं, अफसोस तो होता ही है, हम किसी के आगे अफसोस बताए नहीं, जाहिर नहीं करे, बात अलग है, अफसोस होता है। अहंकार करने के बाद भी अफसोस तो होता ही है, अंदर तो हमारा मन जो है वो तो कचोड़ता ही है, लेकिन वापस फिर हमारा ईगो जो है वो हमें खुलने नहीं देता है, कषायों में रहकर के आप खुल भी नहीं पाते हैं, और जो खुल नहीं पाता है वो खिल नहीं पाता है, जो खुलेगा नहीं वो खिलेगा कैसे। फिर गुलाब खिलेगा तो, खुलेगा तो वो खिलेगा, कषाय हमें बंद कर देते हैं। जीवन के अंदर और कोई विशेष धर्म आराधना हो न हो, छोटी हो बड़ी हो चलेगा, लेकिन प्रसन्नता, प्रसन्न रहें, अपने आसपास को प्रसन्न रखें। बहुत छोटी जिंदगी है, पता नहीं कि कब, ठीक है आप यहां पर आपके खुद के मकान हैं, खुद के घर हैं, लेकिन सोचो कभी किराए के घर में रहते हैं, किसी होटल में जाकर के ठहरते हैं, कितने दिन रहेंगे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ने एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी,
घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, तुझे पानी होगी घर खुशियां, तुझे कांटों पे चलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है।
कई बार लोग बातें करते हैं, जमाना कितना बदल गया, लोग कितने बदल गए, कोई ये सोचता नहीं कि मैं बदलाऊं कि नहीं बदलाऊं। हम कल ही बात कर रहे थे ना कि आदमी खुद को खराब नहीं कहता है तो कहता है कि जमाना खराब हो गया है, पूरी दुनिया खराब हो गई। वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं, वक्त के साथ होता है ऐसा अक्सर, समय गुजरता है, वक्त गुजरता है, आदमी के विचार बदलते हैं, आदमी के मनोभाव, एग्जैक्ट टाइम हो गया, आदमी के मनोभाव क्या, आज प्रेसिडेंट ने सिस्टम बहुत ही बढ़िया किया है, हैट्स ऑफ, तो धन्यवाद देना पड़ेगा, स्पेशल थैंक्स। समय के साथ, वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं, ये हकीकत है, वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं ये हकीकत है, मगर तू मुझे सुनाता क्यों है, ये हकीकत है मगर तू मुझे सुनाता क्यों है, आंख से आंख मिला बात बनाता क्यों है, तू अगर मुझसे खफा है तो छुपाता क्यों है। घड़ी वक्त आपने अपना गुस्सा ने एक आवरण पहरावी दी है, नहीं खुलता सीखो, कोई ना मैं गुस्सो आवी भी जाए, कदाच आवी जाए गुस्सो, तो इन्हें कहो कि मैंने तारा पर गुस्सो आवी गयो, तो पर मारे गुस्सो करवो नहीं चाहिए, जितना इजीली गुस्सो करो तो जितनी सरलता से गुस्सा करते हैं उतनी ही सरलता से सॉरी कहना सीखो। और सॉरी कहना माने वो छोटे बच्चे सॉरी कहते हैं ना, सॉरी कहीं सॉरी नहीं कहा जाता, वो बच्चे कहते हैं वहां तक ठीक है, सॉरी कहने में दर्द तो होना चाहिए, पीड़ा तो होनी चाहिए, उतनी सहजता से जीवन को सहज बनाइए, सहज बनाइए, सरल बनाइए, सहज और सरल जीवन होगा तो वो जीवन धीरे धीरे स्वस्थ बनेगा, स्वस्थ माने स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ, हम अपने आप में रहेंगे, बाहर जाएंगे नहीं, जब गुस्सा करते हैं तो अपने आप को कहना मैं बाहर जा रहा हूं, कितनी देर बाहर जाना है नक्की करो, ज्यादा देर तक बाहर रहना बराबर नहीं है, हमें भीतर के अंदर एक प्रसन्नता हमारा स्वभाव है, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, हमारा रूप जो है, हमारा स्वरूप जो है वो आनंदमय है, ज्ञानमय है, चेतनामय है, हमें आनंदित रहना है, कषाय तो आते रहेंगे कषाय जाते रहेंगे, हमें अपने आप को आनंदित रखना है, हमें अपने आप को प्रसन्न रखना है, और इसके लिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा यदि प्रसन्न रहना है तो वर्तमान क्षण में जीना सीखो, क्षणम जाना ही पंडिया, आचार्य सूत्र ने कहा प्रभु ने, क्षण को पहचानो, जो फल तुम्हारे पास में है वापस वो फल आएगी नहीं, वो क्षण वापस आएगी नहीं, और तो जिंदगी है, हम जिंदगी बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, लेकिन हमारे कदम कहां जा रहे हैं,
प्रतिबिंब बदलाता रहा है कि उम्र बढ़ती जा रही है, सच तो यह है कि मृत्यु निकट ही आ रही है, मेरे संग हर पल जो करता रहा छल, तो कैसे विश्वास करूं दर्पण का जब नहीं भरोसा है एक क्षण का, तो कैसे विश्वास करूं जीवन का। जब नहीं भरोसा,
क्षण को पहचाने हूं, जो फल हमारे पास में है अभी यहां पर आप बैठे हैं तो 100% यू शुड बी हियर एंड एंजॉय व्हाट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ। यू आर हियर, अपने आप को केंद्रित करना सीखो, जहां है जिस जगह वहां पर, और देखो कहां रहना है पहले सोच लेना। बोलिए जोई तो चुप करे न कोई, बैठिए जोई तो उठाड़े न कोई। કોઈની સીટ ઉપર જઈને બેસી ગયા અને પેલા આવીને ઉભા રહે આપણી સામે, એટલે પછી ઉભા થવું પડે, પરાણે ઉભા થવું પડે, પાછળ પછી વિવેક તો કરવો જ પડે ને, ના ના આવો 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 તમે બેસો તમે બેસો, વિવેક કરીને ઉભા થયા અને પાછળ જઈને બેઠા અને બાજુવાળાને કહીએ અક્કલ વગરને બેસાય નહીં કહીએ, એની સીટ પોતાની રિઝર્વડ સીટ છે તો પેલા નહીં આવવું જોઈએ। બેસીએ જોઈ તો ઉઠાડે ને કોઈ, હું હમારે ભીતર મેં જા કરકે બેઠે સ્વસ્થ સ્વસ્થિન તિષ્ઠતિ, અપને આપને રહેના હૈ, કોઈ ઉઠાયેગા નહીં। बाहर जाकर के किसी के दरवाजे पे बैठ गए, किसी के घर पे बैठ गए, कहां तक बैठोगे? या तो तुम घड़ी देखोगे, तुम नहीं देखोगे तो वो घड़ी देखेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो घड़ी ऐसे लगाता है कि वो चालू है कि बंद, ऐसा भी होता है। अब आप तो घड़ी नहीं देख रहे हो, मुझे तो घड़ी देखना पड़ेगा, नहीं तो अभी रुपल मैन वापस आए अलार्म बजा देंगे। बहुत સારી બાતે કરની કા એક મોકા મિલે આપ લોકો કે સાથ ની ઘણી બધી વાતો થઈ તમારી સાથે, છેલ્લા આપણે 6 દિવસ થી વાતો કરીએ છીએ, બહુ મજા આવી, મને પણ બહુ આનંદ થયો, મારો સ્વાધ્યાય થયો। તમે બધાને પણ તમારા ચહેરા જોઉં છું તો મને લાગે છે કે તમને પણ એક આનંદનો થોડોક અનુભવ થયો। પ્રભુના વચનો તમને ગમે છે મારા માટે બહુ સંતોષની વસ્તુ રહે છે, મને જે ખુશી છે, મને જે આનંદ છે હું તો કહી જ નથી। મને તો મારામાં જે કંઈ છે, તમને જે કંઈ દેખાય છે, કશું છે જ નહીં, પણ જે કંઈ છે માત્ર મારા ગુરુદેવ ભદ્રગુપ્ત સુરી મહારાજ એમનું ઘડતર છે। 9 વર્ષની ઉંમરે એમની પાસે આવ્યો હતો, એમનું ઘડતર છે, અને બીજું જો ઘડતર હોય તો મારી માનું છે, એ ભલે ભણેલા નહોતા પણ એને જે વાત્સલ્ય અને જે પ્રેમ છેલ્લી ક્ષણ સુધી મને આપ્યું, એના કારણે થોડું ઘણું પણ એક સમજ આવી અને પ્રભુના વચનો, પ્રભુનું શાસન, પ્રભુનો ધર્મ એ ગમ્યું, અને ગમતી વાતો હું તમારી સાથે થોડીક શેર કરું છું। હું તમને ઉપદેશ નથી આપતો કે કોઈ પ્રવચન નથી આપતો, આ તો થોડીક મને ગમતી વાતો જે છે એ તમારી સાથે હું શેર કરું છું। આ ઈશ્વર વિજયજી મહારાજે એક જગ્યાએ લખ્યું છે, એમણે મારે બનનારું તો બન્યું જ છે, હું તો લોકને વાત જણાવું છું, મને જે પરમાત્માની ભક્તિનો, પરમાત્માની શક્તિનો અને પરમાત્માની અનુરક્તિનો અનુભવ થયો, મને તો થઈ જ ગયો છે અનુભવ, હું તો તમારી સાથે જસ્ટ થોડીક વાતો કરું છું કે તમને બી એ બધું ગમે, અને મને સૌથી વધારે એ ગમે છે કે તમને પ્રભુના વચનો ગમે છે। બસ આ એક બહુ મોટી સિદ્ધિ છે આપણી, કે આપણે પ્રભુના વચનો ગમે, આજે પ્રભુના વચનો ગમે છે કાલે પ્રભુ ગમશે, અને પ્રભુ ગમશે તો પ્રભુના જેવા થવાનું પણ ગમશે, અને ચોક્કસ એક દિવસે આપણી યાત્રા, જરાય ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, માત્ર પ્રભુ આપણને ગમે, હૃદયને પૂછતા રહીએ પ્રભુ ગમે છે, પ્રભુ ગમે છે, પ્રભુ મનમાં રમે છે તો સમજવું કે પ્રભુ ગમે છે। વારંવાર પ્રભુનો વિચાર આવે, કઈ પણ વિચાર આવે તો મારા પ્રભુએ શું કહ્યું છે, આવો વિચાર આવે, ભલે સંસારનું કામ કરતા હોઈએ, દુનિયાદારીનું કામ કરતા હોઈએ, મારા પ્રભુએ આના માટે શું કહ્યું છે, જ્ઞાની પુરુષોએ આના માટે શું માર્ગદર્શન બતાવ્યું છે, અને આપણા જ્ઞાની પુરુષો એટલા દયાળુ કરુણાળુ, જીવનની એક એક ઘટના માટે એમને આપણને ગાઈડન્સ આપ્યું છે, માર્ગદર્શન આપ્યું છે। કોઈ પણ ઘટના આપણે પ્રભુને ભૂલીએ નહીં, પ્રભુને વિસરીએ નહીં, પ્રભુ આપણને ગમે। પછી હવે અહીંયા તો સિસ્ટમ કેવી છે કે ઇન્ડિયાની અંદર તો જે છે ને, લોકો એકબીજાને મળે તો હાથ જોડે, પ્રણામ કરે. પ્રણામ કરવું એટલે એના ચૈતન્ય તત્વને રિસ્પેક્ટ કરવું. આપણે બધાનાથી હાથ જોડતા નથી, જે બધાને હાથ નથી જોડતા. પ્રણામ એમાં વિનયનો ભાવ છે. હવે અહીંયા તમે પ્રણામ કરવાનું ભૂલી ગયા, હાથ મિલાવવાનું શીખે. એટલે મને લાગ્યું કે નાટકો કેમ અહીંયા હાથ મિલાવે છે, પ્રણામ તો કરતા નથી. મને એક જણાએ કહ્યું, જો અમારે ત્યાં સ્થિતિ છે ને કેવી છે, દિલ મિલે યા ના મિલે હાથ મિલાતે રહીએ. આપણે પ્રભુ પાસે એવું નથી કરવાનું, પ્રભુ હૃદયમાં રહેવા જોઈએ. ઘણી વાર કોઈ પણ ધર્મ ક્રિયા કરો કે સંસારની ક્રિયા કરો, પ્રભુને યાદ કરો, પ્રભુને સાથે રાખો. તમે કિચનમાં ચૂલો ઇગ્નાઇટ કરો છો એ વખતે પણ પ્રભુનું સ્મરણ કરો. મનમાં નમો અરિહંતાણમ, અરિહંત પરમાત્માને નમસ્કાર કરો. અને એ અગ્નિકાયના જીવો પ્રત્યે મૈત્રીનો ભાવ પેદા કરો. ચાલવાનું નથી અગ્નિકાયના જીવો વગર, એની વિરાધના કર્યા વગર. વાયુકાયના જીવો, સવારના પરમાં ઉઠીને ષડ જીવનિકાયના જીવો સાથે મૈત્રીનો ભાવ પેદા કરો. કષાયોથી બચવા માટેનો એક સહેલો ઉપાય, ષડ જીવનિકાયના જીવો જેના વગર આપણને ચાલતું નથી. પૃથ્વી, પાણી, ખાતર, પાણી, અગ્નિ અને વાયુ, આ ત્રણ વગર આપણને ચાલતું નથી. અને વનસ્પતિ, તમે વિચાર કરો કેટલા બધા જીવો બલિદાન આપે છે ત્યારે આપણું એક નાનકડું જીવ સર્વાઈવ થાય છે. કેટલા બધાનો કેટલો બધો આપણે ભોગ લઈએ છીએ. અને આપણે કોકના શબ્દોથી ગવાઈને એના ઉપર ગુસ્સો કરી નાખીએ, વર્તી જઈએ એના ઉપર. આ જીવો જે ઉપકાર કરે છે સાયલેન્ટલી, એમનું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે આપણા માટે. એના માટે ક્યારેય આપણે કોઈ સેન્સ ઓફ ગ્રેટિટ્યુડ પેદા કર્યું અંદરમાં? એ જીવો જો બહિષ્કાર કરે, આજે વૃક્ષો ન હોય, પાણી ન હોય, વાયુ ન હોય, તો સ્થિતિ વિચાર કરો કેવી સ્થિતિ થાય આપણી. તો આ જીવો સાયલેન્ટ કોન્ટ્રીબ્યુશન કરે છે. ક્યારે દાવો બી નથી કરતા કે અમે તમારા ઉપર ઉપકાર કરીએ છીએ. આપણી કોઈ ફરજ નહીં. જો આપણા કષાય ભાવ થોડા શાંત થશે તો આ સાયલેન્ટ ઉપકાર કરનારા જીવોના પ્રત્યે કૃતજ્ઞતાનો ભાવ સવારના પોરમાં ઉઠીને ભગવાનની પ્રાર્થના પછી કરશો તો ચાલશે, નહીં કરો તો બી ચાલશે. પણ આ જીવાત્માઓના પ્રત્યે કે મારું જીવન સર્વાઈવ થાય છે એમાં આ લોકોનું કેટલું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે, કેટલો મોટો ઉપકાર છે. આપણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રભુ આ જીવોને જલ્દીથી જલ્દી એમના આ બધા કર્મો દૂર થાય ને એમને હવેની ગતિ, સારી ગતિ મળે, એ વિકાસ કરે એ જીવાત્મા. આપણે પણ એક જમાનામાં આવા જ હતા, આપણું જીવન પણ આવું જ હતું. આપણો વિકાસ થયો તો કે આપણા માટે શુભ ભાવો કર્યા છે, એ શુભ ભાવોનું બળ આપણને મળ્યું. આપણી ફરજ છે એ શુભ ભાવોની યાત્રા આપણે આગળ વધારીએ. એક્શનથી કદાચ ન કરી શકીએ, પ્રવૃત્તિથી ન કરી શકીએ, વિચારોથી સારું કરીએ. વિચારોથી બીજાના માટે સારું વિચારીએ. શિવ મસ્તુ સર્વ જગત સત્ય દુનિયાનું કલ્યાણ છે, બધા જીવો સુખી. મારું ચાલે હું બધાને સુખી કરું. બસ આવા વિચારો કરજો. પરમાત્માની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કંઈ પણ કહેવાયું હોય અથવા આ પ્રવચનો દરમિયાન, વાર્તાલાપ દરમિયાન, વાતો કરવા દરમિયાન કોઈના પણ દિલને દુઃખ થાય એવું મારાથી કહેવાયું હોય, મારા શબ્દોથી કોઈનું દિલ દુખાયું હોય, કોઈને ખરાબ લાગ્યું હોય, તો મિચ્છામી દુકડમ દઉં છું. કોઈ શબ્દો તમને ના ગમે આવો તો મને પાછા આપી દેજો, મને વાંધો નથી. પણ જે તમને ગમ્યું હોય, ભલે થોડુંક ગમ્યું, પણ વાગોળજો, એને વિચારજો, એને યાદ કરજો. અને ક્યારેક થોડોક મને પણ યાદ કરજો. જય જીનેન્દ્ર મિચ્છામિ દુકડમ. હા માનલે. નમો અરિહંતાનમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોયે સવસાહુનમ, એસો પંચ નમોકારો સવપાવપણાસનો, મંગલાણં ચ સવેતિં પરમં હવૈ મંગલમ. ચત્તારિ મંગલમ, અરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, કેવલી પન્નતો દમ્મો મંગલમ.
चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो दम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं दम्मं शरणं पवज्जामि अंगूठे अमृतवते लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लया मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् Yeah.